एकत्र फाउंडेशन करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
हाँ, टोनी मॉरिसन की सुला।
जी, मॉरिसन जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, अमरीकी साहित्य में उनकी आवाज बहुत बुलंद रही है।
बिल्कुल, खासकर अश्वेत अमेरिकी अनुभव और उसमें भी अश्वेत महिलाओं की जिंदगी।
जी,
उनकी कहानियों को उन्होंने जिस तरह सामने रखा है।
हाँ, जो अनकही थी, अनदेखी थी, और उनकी भाषा, उसमें कविता भी है, किरदारों में गहराई भी,
और मिथकों का भी इस्तेमाल करती हैं वो। सुला उनका दूसरा उपन्यास था, 1973 में आया,
और इसकी सेटिंग है द बॉटम, ओहायो का एक काल्पनिक अश्वेत मोहल्ला।
हाँ, और ये नाम ही देखिए, द बॉटम, कितनी विडंबना है इसमें,
है ना? है तो पहाड़ी इलाका, लेकिन नाम पड़ा बॉटम।
हाँ, कहते हैं किसी चालाक गोरे किसान ने एक आजाद गुलाम को ये कहकर जमीन दी कि ये पहाड़ का निचला हिस्सा, मतलब स्वर्ग की तली है, सबसे अच्छी जगह।
कमाल है। तो इसी बॉटम में करीब 1919 से 1965 के बीच हम दो लड़कियों की कहानी देखते हैं, नेल राइट और सुला पीस।
और ये कोई सीधी साधी दोस्ती की कहानी नहीं है, बहुत पैशनेट है, जटिल है, और अंत में दुखद भी।
बिल्कुल, ये दोस्ती ही जैसे उपन्यास का दिल है, और ये हमें एक बुनियादी सवाल तक ले जाती है कि क्या होता है जब दो लोग जो बचपन में इतने करीब थे, जैसे एक दूसरे का हिस्सा, जिंदगी और समाज के दबाव में अलग रास्ते चुन लेते हैं।
सही बात है, ये सिर्फ नेल और सुला की कहानी नहीं रह जाती फिर, ये व्यक्तिगत आजादी बनाम सामाजिक नियम, उसके संघर्ष की कहानी बन जाती है।
और मॉरिसन यहाँ अच्छाई बुराई की जो हमारी बनी बनाई धारणाएं हैं ना,
हाँ,
उन्हें पूरी तरह से तोड़ देती हैं।
उपन्यास की शुरुआत में ही भविष्य की एक झलक है कि ये बॉटम एक दिन खत्म हो जाएगा, वहाँ गोल्फ कोर्स बन जाएगा। ये चीज ये शुरू से ही कहानी पर एक उदासी सी डाल देती है, जैसे हम कुछ खोई हुई चीज के बारे में पढ़ रहे हैं।
सही, इसी माहौल में नील और सुला बड़ी होती है। पहले नील की बात करें।
हाँ, नील, राइट, वो जैसे व्यवस्था, परंपरा, समाज की नजर में सही बने रहने का प्रतीक है।
उसकी माँ हेलेन का उस पर बहुत असर है।
बिल्कुल, हेलेन की अपनी माँ न्यू ऑर्लियंस में वेश्या थी, तो हेलेन जैसे उस अतीत से भागना चाहती है।
अच्छा,
तो वो नील पर बहुत ज्यादा अनुशासन रखती है, शिष्टाचार, सम्मान, इन चीजों पर बहुत जोर देती है।
तो नील का अच्छा होना एक तरह से उसकी मजबूरी बन जाता है।
हाँ, एक तरह से। और दूसरी तरफ है सुला पीस,
उसका घर, पीस हाउस, वो तो एकदम उल्टा है।
बिल्कुल, वहाँ कोई नियम कायदे नहीं, एक अजीब सी आजादी है, जिंदगी का एक बेतरतीब सा जश्न।
दादी ईवा पीस है वहाँ, घर की मुखिया।
हाँ, जिनका एक पैर नहीं है लेकिन जिंदा दिली भरपूर है, और उनके फैसले अक्सर चौंकाने वाले, नैतिक रूप से आप कह सकते हैं कि धुंधले।
और सुला की माँ हन्ना,
हन्ना पीस, वो रिश्तों को लेकर बहुत आजाद ख्याल है, सहज है।
तो सुला ऐसे माहौल में बड़ी हो रही है जहां वो देखती है कि दुनिया के बनाए नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
सही, वो वैकल्पिक हैं।
तो ये दोनों घर, नेल का और सुला का, दो अलग दुनियाएं हो गईं।
हाँ, एक तरफ अनुशासन और सम्मान का बोझ, दूसरी तरफ नियमों को तोड़ने की खुली छूट,
और यहीं से उनकी शख्सियत बनती है,
नेचर।
बचपन में वो एक दूसरे को पूरा करती थी, मॉरिसन लिखती है, जैसे एक ही जिस्म के दो हिस्से।
उनकी दोस्ती दुनिया की मुश्किलों से एक पनाहगाह थी।
बिल्कुल, लेकिन सवाल वही, क्या ये पनाहगाह टिक पाती है?
बचपन की एक घटना है जो शायद पहला इशारा देती है, चिकन लिटिल वाली।
हाँ, वो छोटा लड़का चिकन लिटिल नदी किनारे खेल रहे होते हैं और सुला के हाथों से फिसलकर वो डूब जाता है।
ये एक हादसा था।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन ये उनका पहला साझा राज बन जाता है, पहला बोझ, और दोनों का रिएक्शन बहुत अलग है।
नेल वो अंदर से अपराध बोध से भर जाती है, डर जाती है।
हाँ, लेकिन सुला वो अजीब तरह से शांत दिखती है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा।
और शायद यहीं से उनके बीच एक अनदेखी दरार पड़नी शुरू होती है।
हो सकता है, ये उदासीनता नहीं थी शायद, बल्कि भावनाओं को समझने और जताने का उसका अपना तरीका था जो समाज के पैमानों में फिट नहीं होता था।
हाँ, ये बात आगे और साफ होती है, जैसे ईवा पीस का किरदार है।
ओ हाँ, ईवा पीस, पति छोड़कर चला गया, वो 18 महीने गायब रही, लौटी तो एक पैर कटा हुआ था, पर साथ में घर बनाने लायक पैसा था।
गजब की इच्छा शक्ति थी उसमें जीने की।
बिल्कुल, लेकिन उसके फैसले, जैसे बाद में अपने ही बेटे प्लम को।
हाँ, वो तो दहला देने वाला है। प्लम युद्ध से लौटा है, नशेड़ी बन चुका है,
जिंदगी से हारा हुआ, और ईवा उसे जिंदा जला देती है।
और वो उसे दया कहती है, मुक्ति, कि वो उसे बच्चे की तरह बेबस जीने से बचा रही है।
ये प्यार का एक बहुत ही भयानक विकृत रूप है, लेकिन ये हमें द बॉटम की दुनिया दिखाता है। वहाँ नैतिकता के मायने कितने अलग, कितने जटिल हो सकते हैं।
अलग ही नैतिक समझ थी।
मॉरिसन हमें जवाब नहीं देती,
वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं सुला के किरदार के लिए भी जमीन तैयार करती हैं।
एक और घटना है जो सुला को लोगों की नजरों में अजीब या अलग बनाती है, उसकी माँ हन्ना की मौत।
हाँ, हन्ना घर के आंगन में जल जाती है और उस वक्त सुला बस खड़ी देखती रहती है,
जैसे कोई बाहरी दर्शक हो,
कोई तमाशा देख रही हो,
जबकि दादी ईवा उसे बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद जाती है।
और लोग सुला के इस शांति को उसकी बेहिस्सी मान लेते हैं,
उसके अजीब होने का एक और सबूत।
इन्हीं सब हादसों और अनुभवों के बीच वो बड़ी होती है। इसी दौर में एक और किरदार है, शेडरैक।
हाँ, शेडरैक पहले विश्व युद्ध का सैनिक, PTSD से जूझ रहा है।
हाँ, युद्ध के सदमे से, और वो कस्बे में नेशनल सुसाइड डे मनाता है।
साल का एक दिन जब कोई चाहे तो अपनी जान ले सकता है।
अजीब है, पर ये शायद समुदाय का डर और मौत से निपटने का अपना तरीका था।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि द बॉटम अपने दुखों और डरों से कैसे जूझता है, अपने तरीके से।
खैर, कहानी आगे बढ़ती है, नेल और सुला जवान होती हैं और अब उनकी राहें साफ तौर पर अलग होने लगती हैं।
हाँ, नेल वही करती है जिसकी समाज उससे उम्मीद करता है,
शादी जूट ग्रीन से।
हाँ, जूट ग्रीन एक ऐसा अश्वेत आदमी जो नस्लवाद के कारण मिले कम मौकों से कुंठित है और शादी करके घर बसाकर जैसे अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है।
और नेल को इस शादी में क्या दिखता है? सामाजिक स्वीकृति, सुरक्षा।
हाँ, शायद दोनों। वो एक तरह से अपनी माँ हेलेन के रास्ते पर ही चलती है, समाज के ढांचे में फिट होने की कोशिश।
पर इस सुरक्षा की कीमत क्या है? क्या वो अपनी असलियत का कोई हिस्सा दबा रही है? ये सवाल बना रहता है।
बिल्कुल, और वही दूसरी तरफ सुला वो एकदम उल्टा रास्ता लेती है।
वो द बॉटम छोड़कर चली जाती है, कॉलेज, घूमना फिरना, 10 साल बाहर।
हाँ, वो शादी, बच्चे, घर, इन सब पारंपरिक चीजों को सिरे से नकार देती है। उसे अपनी शर्तों पर जीना है, पूरी आजादी।
और फिर 10 साल बाद वो लौटती है।
हाँ, और उसके लौटने के साथ ही शहर में रॉबिन पक्षियों का एक झुंड आता है जिसे लोग अपशकुन मानते हैं।
बदलाव का संकेत।
बिल्कुल,
और सुला वाकई एक बदलाव लाती है, एक तूफान।
वो अब पहले से ज्यादा आजाद ख्याल है, पढ़ी लिखी है, और द बॉटम के छोटे बंधे बंधाए नियमों की उसे कोई परवाह नहीं।
हाँ, आते पहला काम क्या करती है? अपनी दादी ईवा को नर्सिंग होम भेज देती है।
ये बात लोगों को बहुत बुरी लगती है।
बिल्कुल।
फिर वो मर्दों के साथ बेपरवाह रिश्ते बनाती है। शहर के लिए वो एक पहेली है, एक खतरा।
और फिर वो होता है जो नेल और सुला के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देता है।
हाँ, सुला वो नेल के पति जूड के साथ संबंध बनाती है।
ये बस एक पल का आवेग था शायद, सुला के लिए इसका कोई गहरा मतलब भी नहीं था शायद।
शायद नहीं, लेकिन नेल उन्हें देख लेती है रंगे हाथों। और नेल के लिए ये सिर्फ बेवफाई नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया का ढह जाना था। उसकी पहचान, उसका चुना हुआ रास्ता सब बिखर गया।
जूड उसे छोड़कर चला जाता है।
हाँ, और नेल और सुला की दोस्ती जो कभी उनकी पनाहगाह थी, अब वो नफरत और कड़वाहट में बदल जाती है।
यहाँ दरअसल दो जीवन दर्शन टकरा रहे हैं ना?
बिल्कुल, सुला की आजादी जो रिश्तों को शायद स्थायी नहीं मानती, और नेल की सुरक्षा की चाह जो शादी और परिवार पर टिकी थी।
सुला के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, दोस्ती तोड़ने वाली बात नहीं थी।
हो सकता है, लेकिन नेल के लिए ये सबसे बड़ा विश्वासघात था। और इसके बाद सुला समुदाय के लिए क्या बन जाती है?
पूरी तरह से बहिष्कृत, आउटकास्ट।
हाँ, लोगों से बुराई का प्रतीक मानने लगते हैं, शैतान, उसके माथे पर जो जन्म का निशान है।
हाँ, उसका क्या होता है?
लोग उसे भी अपनी कल्पना के हिसाब से देखने लगते हैं। किसी को वो गुलाब दिखता है, किसी को सांप, किसी को मेंढक का बच्चा।
मतलब वो जैसे समुदाय के सारे डरों और बुराइयों का आईना बन जाती है, लोग उसमें वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं।
सही कहा। और विडंबना देखिए, सुला के इस बहिष्कार से समुदाय में एक अजीब तरह की एकता आ जाती है।
अच्छा,
वो कैसे?
पति ज्यादा वफादार हो जाते हैं, माएं अपने बच्चों को लेके ज्यादा चौकस हो जाती हैं, जैसे एक साझा दुश्मन मिल जाने से बाकी सब ठीक हो गया हो।
कमाल है, ये दिखाता है कि समुदाय कैसे अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी को बलि का बकरा बना देता है।
बिल्कुल। उधर सुला का अकेलापन बढ़ता जाता है, उसका एक आदमी से रिश्ता बनता है, एजैक्स।
हाँ, एजैक्स।
वो कुछ हद तक उसकी आजादी को समझता है, उसकी इज्जत करता है।
हाँ, लेकिन जैसे ही सुलह उस पर थोड़ा सा भी हक जताना चाहती है
वो भी भाग जाती,
क्योंकि सुलह जैसी आजादी उसे कोई संभाल नहीं पाता।
हाँ।
आखिरकार सुलह बीमार पड़ती है अकेली,
और उसकी मौत से पहले नील उससे मिलने जाती है सालों बाद।
हाँ,
और उनकी बातचीत बहुत कड़वी है, अनसुलझी।
सुलह आखिर तक अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाती।
वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी और वो इसके लिए किसी से माफी नहीं मांगेगी।
हाँ, वो कहती है नरक का असली नरक ये है कि ये हमेशा के लिए है। मतलब वो अपने चुनाव और उसके नतीजों को स्वीकार करती है बिना किसी शिकायत के।
सुला की मौत के बाद समुदाय का क्या होता है? वो बलि का बकरा तो चला गया जिसके खिलाफ वो एकजुट थे।
हाँ, और शायद ये वजह है कि इसके बाद समुदाय बिखरने लगता है, वो जो एकता थी वो खत्म हो जाती है।
और फिर वो सुरंग वाली दुर्घटना होती है नेशनल सुसाइड डे के दिन।
हाँ, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जैसे सुलह के जाने से वो धागा ही टूट गया हो जिसने उन्हें किसी तरह बांध रखा था।
उपन्यास का अंत हमें कई साल आगे ले जाता है 1965 में। द बॉटम अब नहीं रहा।
नहीं, उसकी जगह गोल्फ कोर्स बन गया है। वो जगह, वो यादें सब मिटा दी गई हैं।
और नेल, वो अब बूढ़ी हो चुकी है।
हाँ, वो नर्सिंग होम में ईवा से मिलती है। ईवा अभी भी रहस्यमयी है। वो नेल पर इशारा करती है कि चिकन लिटिल की मौत में वो भी शामिल थी।
और फिर नेल सुला की कब्र पर जाती है।
हाँ, और वहीं इतने सालों बाद उसे एक जबरदस्त एहसास होता है।
क्या एहसास होता है उसे?
उसे समझ आता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा नुकसान जूट का जाना नहीं था,
बल्कि
सुलह का खोना था। वो जो सालों से एक अनजाना सा बोझ, एक खालीपन महसूस कर रही थी, वो सुलह के लिए था। और वो रो पड़ती है, कहती है हम लड़कियां साथ थीं, हे भगवान। सुलह वो रो पड़ी, लड़की 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 लड़की,
ये पुकार जैसे हवा में गूंजती रह जाती है दुख के घेरों और घेरों की तरह।
दिल चीर देने वाला अंत रही है। और ये मॉरिसन का शायद सबसे शक्तिशाली बयान है।
हाँ, कि समाज चाहे शादी और रोमांस को कितना भी ऊपर रखे, औरतों के बीच की दोस्ती, उसका बंधन कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा बुनियादी हो सकता है।
नेल ने सामाजिक नियमों को चुना, सुरक्षा को चुना, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता, अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया था।
तो ये कहानी हमें दोस्ती, आजादी, समुदाय, नैतिकता, नस्लवाद, यादें, इन सब के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं।
बिल्कुल, और मॉरिसन किसी भी चीज को आसान नहीं बनाती। उनके किरदार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रे है। हम सब की तरह ईवा, सोला, नेल, कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है।
हाँ, और यही उनकी खूबी है। वो हमें किरदारों को समझने की चुनौती देती हैं, न कि उन पर फैसला सुनाने की।
वो दिखाती हैं कि कैसे द बॉटम जैसी जगह पर, जहां नस्लवाद और गरीबी ने लोगों के मौके सीमित कर दिए हैं, वहां जीने के नियम, नैतिकता, वो अलग हो सकती है।
हाँ, जैसे जूड की कुंठा या हेलेन का सम्मान पाने का जुनून, ये सब उस सामाजिक दबाव का नतीजा है।
और उनकी लिखने की शैली भी कमाल की है।
हाँ, वो कहानी को सीधी सीधे नहीं कहती, समय आगे पीछे होता रहता है, जैसे हमारी यादें काम करती हैं।
और प्रतीक, सिंबल्स भरे पड़े हैं। द बॉटम खुद एक प्रतीक है। आग और पानी बार बार आते हैं। सुला का बर्थमार्क। सुला पढ़ने के बाद एक एक बेचैनी सी रह जाती है। ये आपको आराम नहीं करने देती।
सही कहा, ये आपसे सवाल पूछती है। आप नेल होते तो क्या करते, या सुलह?
क्या पूरी आजादी सच में मुमकिन है, या इसकी कीमत हमेशा अकेलापन होती है?
क्या समुदाय हमेशा हमें बचाता है, या कभी कभी हमें हमें कैद भी कर लेता है?
मुझे लगता है ये उपन्यास इसीलिए आज भी इतना प्रासंगिक है। ये मानवीय रिश्तों की जटिलता, हमारी अपनी नैतिक दुविधाओं और खुद को खोजने की मुश्किल राह को बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है।
हाँ, ये उन बंधनों की छिपी हुई ताकत और अहमियत को उजागर करता है, जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, खासकर औरतों के बीच के रिश्तों को।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब दुनिया हमसे एक जैसा बनने की उम्मीद करती है, तब हम अपनी असलियत का कितना हिस्सा कुर्बान कर देते हैं, और इसकी असली कीमत क्या होती है?
या शायद ये सवाल कि क्या सचमुच की आजादी और गहरे इंसानी रिश्ते, क्या वो एक साथ निभाए जा सकते हैं?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।